कुछ लोग सारी बातों को सुनने और जानने के बावजूद भी इस इस्लाम पर कायम नहीं रहते। क्या एकदम ढल जाते हैं, एकदम ढलक जाते हैं? नहीं, बल्कि आयत 137, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, फिर सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए। अल्लाह अकबर। सुम्मा आमनू, फिर कभी मौका आया तो मुसलमान हो गए, लेकिन सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए। ये आंख मिचोली रही ईमान और कुफर की, नतीजा क्या हुआ? सुम्मस्दादु कुफरा, फिर तो बढ़ते ही गए वो कुफर में। ये नहीं कहा कि सुम्मस्दादु ईमाना, क्योंकि जब कुफर और ईमान की आंख मचोली होती है तो फिर ईमान का नूर बुझ जाता है, उस लाइट की तरह जो बुझ खराब होने वाली होती है, तो कभी जलती है, कभी बुझती है, जलती है और बुझती है, फिर एकदम आखिर में वो फ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई अब खराबी आ गई। इसी तरह वो लोग जो कुफर और ईमान की आंख मिचोली खेलते हैं, आखिर उनका अंजाम क्या है? सुम्मस दादु कुफरा, फिर वो और कुफर में बढ़ने लगते हैं। क्या अंजाम है इन लोगों का? लम यकुनिल्लाहु, ऐसा हरगिज नहीं है अल्लाह, क्या के लिए यग़फिरा लहुम, कि उनको बख्श दे। यानी अल्लाह ने कोई इनसे वादा नहीं किया कि तुम कुछ भी कर लो मैं बख्शूंगा ज़रूर, चूँकि तुम मुसलमान हो, चूँकि तुम उम्मत मुस्लिमा में से हो और तुम गलत भी करो तो मैं तुम्हें बख्शूंगा, कोई वादा अल्लाह ताला ने उनसे ऐसी बख्शिश का नहीं लिया। और दूसरा इनका अंजाम क्या है? वला लियहदियहुम सबीला, और ना उनको दिखाएगा रास्ता, यानी अब उनको इस्लाम दिखेगा ही नहीं। हक के रास्ते से नीचे उतरा तो अब हक का रास्ता मादूम हो गया, दिखेगा नहीं। इस एक आयत में निफाक का तदरीजी अमल बयान किया गया, तदरीज है स्टेप्स में, ग्रेजुअली। जिस तरह ईमान दिल के अंदर मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद पैदा होता है ना, मुश्किलात से ईमान बढ़ता है, इल्म से ईमान बढ़ता है, अल्लाह ताला की मार्फत हो, मोहब्बत हो, उससे ईमान बढ़ता है, कायनात में गौर व फिक्र से ईमान बढ़ता है। इसी तरह याद रखिए कि मुस्लिम मुनाफिक में एकदम नहीं ढल जाता। एकदम ये नहीं कि आज सफ़ेद कपड़ा था और कल काला हो गया। आप सफ़ेद को काला करेंगे ना तो बीच में ग्रे के शेड्स आएंगे, हकीकी बात है। इसी तरह ईमान से कुफर की तरफ आते हुए इंसान की कैफियत बहुत मुख्तलिफ होने लगती है। जब ईमान के बाद कुफर, कुफर के बाद ईमान होता है, तो असल में ये अंदर की कैफियत है, ये बातिन की कैफियत बयान हुई है, जुबान की नहीं है कि एक दिन के ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे दिन के कि हम इनकार करते हैं, बल्कि अंदर की कश्मकश है। ज़ाहरी अमल की बात नहीं है, ये बातिन की बात है। ईमान खींचता है और कभी कुफर भी खींचता है। जब इस्लाम को फ़ायदा होता है तो मुसलमान बन के आगे, इस्लाम की तरफ आगे, और जब कोई इस्लाम की वजह से मुश्किल आई, कोई शिद्दत आई तो छट गए, कुफर की तरफ चले गए। फिर कोई मौजज़ा आया, कोई इस्लाम मुसलमानों का गलबा सामने आया तो इस्लाम पे आ गए, और जब मुसलमानों को कोई शिकस्त हुई, कोई नुकसान हुआ तो कुफर की तरफ चल पड़े। ऐसे लोग जो हैं वो चढ़ते सूरज के पुजारी बन जाते हैं। अल्लाह को ऐसे ज़ाहरी लोग बिल्कुल पसंद नहीं कि जो सिर्फ तरक्कियों के साथी हों, जो सिर्फ कामयाबियों को देखकर इस्लाम हक को इस्लाम कहें और ज़रा ओहद वाली कैफियत आए तो पीछे पलट जाएं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ईमान के बाद कुफर और कुफर के बाद ईमान वाली बात करते हैं। आप ज़रा सोचिए तो सही, हम ये बात यहाँ एक पुरसकून माहौल में पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं हाय कितने बुरे हैं, कुफर ईमान, कुफर ईमान। लेकिन अगर आप अमली ज़िंदगी में देखें तो कहाँ कहाँ ये जंग नहीं चल रही, घरों में, ज़िंदगी के मामलात में, तिजारतों में, जहाँ कोई ऐसा मामला आता है जिसके अंदर हमारी ख्वाहिशों को सामने आना हो तो क्या होता है? कर लो, कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं। जो सबका मामला है हमारा भी है। जिनको अल्लाह ताला माफ़ करेगा तो हमें भी कर देगा। क्या आज ऐसे लोग हमें नहीं दिखते? तो यहाँ आप देखिए कि कुफर और निफाक की बात को अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख के ऐसे लगता है कि एक ऐसे किरदार की बात की जो बड़ा मूढ़ी है। कुछ लोग मूढ़ी होते हैं, कोई भी नेकी का काम किया, थोड़े दिन किया, अब दिल भर गया, पढ़ने बैठे थे बहुत पढ़ लिया, पढ़ लिए पांच पारे, अब घर बैठते हैं, चख लिया मज़ा कुरान का, अब पता चल गया पांच पारों का तर्जमा याद हो गया, बस आगे क्या पढ़ना है। हाँ, नमाज़ें पढ़ने पे तो खूब लंबी लंबी नमाज़ें, और जब छोड़ा तो नमाज़ें ऐसी छुट्टी कि फिर फ़र्ज़ भी पीछे हट गए। बस लोग जब दीन की तरफ आते हैं बड़े जोश के साथ आते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद कहते हैं नहीं, ज़िंदगी बड़ी खुश्क हो गई है, बहुत संजीदगी आ गई, और हम तो बिल्कुल अब ख़ानदान से कटने लगे, अपने आप को बिल्कुल वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि वो शख्स दूर चले जाता है। अब देख, कभी किसी शख्स को दरिया में या समंदर में डूबते हुए देखा है? अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन जब भी कोई डूबता है ना तो एकदम नहीं डूबता, पहले उसकी लाश तैर तैर के ऊपर आती है, यानी अभी वो स्ट्रगल के फेज में ऊपर नीचे होता है, और बिल आखिर जब उसके अंदर से बिल्कुल सांस खत्म होता है तो उस वक्त फिर वो डूबता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि ईमान की मौत जो होती है ना वो भी लम्हा लम्हा होती है, और उसके बाद में फिर इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब एक इंसान दीन को और ईमान को खेल बना लेता है ना तो अल्लाह ताला फिर ईमान की तौफीक छीन लेता है। मैं इस बात को बिल्कुल नीचे ला के पेश कर दूं कि मिसाल है कि हम सब कुरान सीख रहे हैं, आप में से कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अक्सरियत ऐसी ही है कि जो बड़े शौक और ज़ौक से कुरान के लिए आते हैं, वक्त से पहले तैयार होकर बैठते होंगे तभी तो वक्त पे पहुंचते हैं। ऐसे लोगों का ईमान बड़ा महफूज है, कौन सा इस क्लास पर ईमान, इस कुरान की तालीम पर ईमान। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कभी देर से आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी वक्त से पहले भी आ जाते हैं लेकिन कभी देर से हैं। ये कौन से लोग हैं जो अभी तक इस बात को डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये किताब हमारी ज़िंदगी है, ये किताब हमारी बीमारियों की शिफा है, ये किताब हमें वो सुकून देगी जो नींद नहीं देगी। ये वो लोग हैं जिनको भी नींद इतनी प्यारी है जितना ये कुरान प्यारा नहीं, जिनको इत्मीनान मिलता है या खाने से या सोने से या दुनिया के दूसरे मामलात से। अब ऐसे लोगों का हाल क्या होता है कि एक वक्त आता है कि फिर वो अगर पहले हफ्ते में एक या दो दिन लेट आते थे तो 2-3 हफ्ते के बाद फिर वो हफ्ते में 3 दिन लेट आएंगे, और अगले हफ्ते में 4 दिन लेट आएंगे, फिर 5, और एक वक्त आएगा कि फिर वो आएंगे ही नहीं। कोई किसी को मत देखे, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। ये वो तकलीफ़ की कैफियत है कि फिर अल्लाह ताला तौफीक छीन लेते हैं। देखिए सुम मस्दाद कुफरा को लिख लें और अपनी 24 घंटे के मामूलात को एक हफ्ते तक चेक कर लें, एक दिन जो खराबी थी ना वो हफ्ते के एंड पे कई गुना बढ़ चुकी होगी। ये सिर्फ कुरान के लिए इधर आने की बात नहीं है, हर मामले में तौफीक छिनती है। ये अल्लाह का इतना बड़ा इंतकाम है जिसको लोग कामयाबी समझते हैं, चलो जान छूटी, जज्बाती फैसला कर लिया था बच गए, अब क्या अपनी जान पे बोझ डालें, रोज आए, रोज बैठें, इतना पढ़ें, इतनी किताबें खरीदें, इतने पैसे लगेंगे, सफर में होंगे, टिकट लेंगे, शुक्र है अब चैन से घर बैठ गए। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा इस्तादु कुफरा लम यकुन अल्लाहु लियग़फिर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। अगर इस आयत को अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लिया जाए, इसको खूबसूरत लफ्ज़ों में लिखें, जहाँ जहाँ आपकी निगाह पड़ती है वहाँ इसको खूबसूरत तरीके से लिख कर तर्जमे के साथ लगा लें, जब कभी नेकी की तरफ बढ़ते हुए कदम पीछे हटने लगें। हर बंदा नेकियाँ करता है और हमारे कल्चर में तो नेकियाँ भी मौसमों के साथ होती हैं, रमज़ान आता है तो नेकियों की बहार आ जाती है, रमज़ान जाता है तो नेकियां भी ठंडी होती हैं, चांद के साथ नमाजियों की तादाद मस्जिदों में घटती और बढ़ती है। मुसलमानों में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था, जब कभी कोई नेकी कर रहे थे और अब नहीं कर रहे तो अपना जायज़ा ले कि कहीं ये अल्लाह का इंतकाम तो नहीं। देखिए जब आपको यकीन हो जाता है ना कि बंदा आपको बुलाना भी नहीं चाह रहा, बुलाना चाह रहा है आता भी नहीं, दिल भी नहीं, कच्चे दिल से आपको बुलाता है फिर आपको नहीं बुलाता, तो आपका दिल चाहता है उसके घर जाने को। मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके घर में फ़ोन बेल होती है, अब बड़े प्यार से फ़ोन उठाते हैं, आगे आपकी कोई जानने वाली हैं, कोई दोस्त है, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ये वो मेरे घर इस जुमे को दावत है, आप आइएगा, मैं आपको अपने घर में इनवाइट करती हूँ। अब तो खुश हो जाएंगे, चले भी आपने बुलाया बहुत अच्छी बात है, हाँ जी आएंगे, बात हुई ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर 2-4 घंटे गुजरे, फिर फ़ोन आए, वो सॉरी मैंने माजरत करनी थी, वो मैं कुछ मेरा मसला आ गया तो प्लीज़ अब इस वीक नहीं, मैं आपको दोबारा बताऊँगी। आप कहेंगे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, पॉसिबल है ना, आप फिर भी मुतमईन होंगे, कोई आपके दिल में बदगुमानी नहीं आएगी। उसके बाद दोबारा उनका फ़ोन आ जाए रात को या अगले दिन सुबह, नहीं मैंने सोचा कि मैं आपको बुला ही लूँ, देखे ना मैंने अब आपको कह दिया था तो बड़ा बुरा लग रहा है, ऐसा करें कि आप आ ही जाइएगा। अब आप सोचेंगे अच्छा नहीं इतनी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन आपने खैर वो आपको कहें, आप मुझे बताएं कि जब इसके बाद दोबारा अगर वो आपको कहें कि नहीं अब आएँ या ना आए, जो दावत बन बन के बिगड़ती है, कोई कहे आ जाओ ना आ जाओ, क्या दोबारा आप वहाँ खुशी से जाएंगे? आप कहेंगे नहीं आप पहले डिसाइड कर लें, और कोई इतना बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मजबूरी थोड़ी है, मुझे अपने घर पर ही चैन आएगा। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में दिल के पूरे, जिसको कहते हैं ना हजूरी कल्ब के साथ नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता उससे तौफीक छिन जाती है। यहाँ बैठे हुए अपनी ज़िंदगी के पिछले चंद सालों पर नज़र डालें, एक साल में जितनी नेकियाँ कर रहे थे और अब नहीं कर रहे, क्यों छूटी? ये अल्लाह का इंतकाम है। एक वक्त होता है हम कहते हैं कि हम नहीं आ रहे अल्लाह की तरफ, और एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह कहता है मैं अब तुम्हें आने ही नहीं दूंगा। जब बार बार किसी को अब दावत देते हैं ना, बार बार दावत देते हैं दीन की नेकी की और वो कबूल नहीं करता, तो अल्लाह ताला उससे तौफीक छीन लेता है, और ऐसे लोग फिर ईमान का खेल तमाशा बना लेते हैं और ऐसे लोगों को देखकर दूसरे लोग भी पसल होते हैं, ये भी याद रखें। ऐसे मुसलमानों ने ही असल में आज कितने लोगों के रास्ते रोके हुए हैं कि किसी उसी मुंह से उस इस्लाम की तारीफें सुनते थे और उसी मुंह से कहनी इस्लाम बड़ा सख्त है और बड़ी रिजिडिटी है। अल्लाह ताला को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, कहा कि तुम अपने घर में बैठो। ऐसे लोग फिर गोया के खुद अपना मजाक बनते हैं। सड़क पे आप देख लें, एक शख्स जा रहा है, फिर एक तरफ इस तरफ जाए, फिर इधर जाए, इधर जाए, बार बार लेन चेंज करे, कैसा लगेगा? मैं चाह रही हूँ कि किसी तरह ये मंजर आपके जहन की स्क्रीन में फिट हो जाए कि आ मनु सुम का फरू, आ मनु सुम का फरू। कोई एक शख्स एक तरफ जा रहा है नॉर्थ साइड पे, चंद फरलांग चले, फिर वहां से पलट के गाड़ी मोड़े और वापस आ जाए साउथ साइड पे, आता ही रहे जाता ही रहे, सारा दिन उसकी गाड़ी का गैस चलता रहेगा, पहुंचेगा कहाँ? वो उसी दायरे में रहेगा। ये दायरा जो बन जाता है ना, ये असल में ख्वाहिशों का दायरा है, ये तासुब का दायरा है। जिस बंदे को अल्लाह के रास्ते में भड़ना होता है ना, फिर वो पीछे नहीं आता। वो कहते हैं जहाँ कदम रखा, अब गलत रखा ठीक रखा करके रहेंगे, करके दिखाएंगे। अब अगर तुम हमें बुरा कहते हो, फिर हम बुरे बन के दिखाएंगे। तो ईमान वाले के अंदर जब तक इस दर्जे की इस्तकामत नहीं आ जाती, तब तक वो दीन के लिए खूबसूरत मिसाल नहीं हो करता। और यकीन करें कि इसकी इतनी मुख्तलिफ किस्म की तफसीरें मुफस्सरीन करते हैं, और मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरा दिल खिल जाता है। मैं कहती हूँ वाकई उन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई थी। हम लोगों ने तो ज़िंदगियाँ कपड़े बनाने और जेवरात में और शादियाँ और मंगनियाँ करने कराने में गुजार दी ना। जिस चीज़ में बंदे का इंटरेस्ट होता है, उतना ही ज़्यादा वो उस चीज़ में कोशिश करता है। लोगों को बाज़ारों के चक्कर लगाते देखा करें, एक जोड़ा और एक मैचिंग लेने के लिए कितनी तरफ जाते हैं, इधर और उधर जाते हैं, नतीजा क्या होता है कि वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। जो औरतें बहुत बाज़ार जाती हैं, उनको गलियों का भी पता होता है, कहती इधर आओ मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, तुम तो ये महंगी दुकान से ले आती हो, मैं तुम्हें सस्ती दुकान से लेके आती हूँ, देखो मुझे ये रास्ता पता है वो रास्ता पड़ा है। और जिसने ना नीत, वो कहते हैं ना नीयत की ना कज़ा की, उसको क्या लगे? उस बेचारे को पता ही नहीं, जो उसको किसी ने दिया वो लेके आ गया। तो इंसान जिस तरफ अपनी स्किल्स को लेके आएगा, उसी तरफ अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ कर देंगे। आगे भी सूरह तौबा में एक आयत आएगी कि जो जिस राह पे चलेगा, अल्लाह ताला उस रास्ते को उसके लिए आसान कर देंगे। तो ऐसे लोगों को फिर अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो उस दर्जे से घट के कहाँ आ जाते हैं? निफाक के दर्जे पे। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला एक खुशखबरी देता है तंस के तौर पे, क्या? बशरिल मुनाफिकी नबियन लहुम अजाबन अलीमा। खुशखबरियाँ सुना दीजिए मुनाफिकों को इस बात की कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तंजिया अंदाज है, यानी ये खुद को कामयाब समझने वाले, बड़े होशियार समझने वाले, इस्लाम से अपने आप को दूर करके, दीन के तकाजों से दूर करके अपने आप को आफियत में समझने वाले, अपनी ही पीठ ठोकने वाले, और कहते हैं देखो क्या खूब बैलेंस रखा हुआ है, दीन भी रख रहे हैं दुनिया भी रख रहे हैं, कोई बेवकूफ़ों की तरह चल नहीं पड़े, बातों में नहीं आगे। अब हमने अपनी ज़िंदगी को यूं ही अजीरन कर दिया कि सारा हफ्ता घर की होश ही नहीं, ठीक है कुछ ये भी कुछ वो भी, और खुश होकर महसूस करते हैं अपने आप को क्या कि हम कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ चंद लफ्ज़ों के में इनका जिक्र कर दिया कि इनको बशारत दे दो, बशर से, बुशरा उस खुशखबरी को कहते हैं जिसका असर चेहरे पे आए। मुराद क्या है कि ऐसे लोग जब ऐसी बातें करके खुश हो रहे तो अल्लाह इनको कहते हैं तुम और ही खुश हो जाओ। बस लोगों ने इस आयत को पीछे अली को यहूद से भी रिलेट किया कि यहूद हज़रत मूसा पर ईमान लाए, फिर उसके बाद हज़रत उज़ैर पर ईमान लाए, फिर हज़रत उज़ैर पर ईमान लाए लेकिन हज़रत ईसा का कुफ़र कर दिया, हत्ता कि अल्लाह के नबी की नबूवत का इनकार किया। बास कहते हैं कि इससे मुराद नसारा के यहू हज़रत मूसा पे ईमान लाए नहीं, हज़रत मूसा पे लाए, हज़रत उज़ैर पे लाए, फिर हज़रत ईसा पे भी ले आए लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। और तीसरे दर्जे में फिर इससे मुराद उम्मते मुस्लिमा के मुनाफिक हैं कि जो नबियों पे तो सारों पे ईमान लाते हैं लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन के ऊपर नहीं चलते। ऐसे सारे काम करने वालों को अल्लाह ताला यहाँ मुनाफिक कहकर खुशखबरियाँ दे देते हैं कि जाओ फिर दर्दनाक अजाब की खुशखबरियाँ सह लो, सुन लो। ये निफाक आया कहाँ से? ये काफर व आमन व अकली ज़िद का ही, अब आयत 139 में इसी का तस्कर है। आप कह सकते हैं कि 139 का टॉपिक क्या है कि निफाक आता कहाँ से है? स्लैश लगाइए, कुफार की दोस्तियाँ। वो कुफार की दोस्तियाँ, ज़ाहरी दोस्तियाँ, बैठना उठना भी हो सकता है और उनकी उनको मीडिया से देखकर उनके लाइफस्टाइल पे मरना भी हो सकता है। इसीलिए अगली आयतों में अल्लाह ताला ने अब इन हरकतों का तस्करा किया कि अल्लज़ीन यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीन औलिया। ये वो लोग हैं जो काफिरों को दोस्त बना लेते हैं, विलायत के दर्जे पर ले जाते हैं, पीछे बात हो गई। इनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने लगते हैं और इनका हाल क्या होता है कि वो इनसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं और क्या अयब तगून इंदहुमुल इज्जा, क्या ये इनके पास इज्जत ढूंढने जाते हैं, यानी इनको लगता है कि सारी इज्जत इनके पास है। क्योंकि ऐसे लोग जो निफाक के दर्जों में फड़ने लगते हैं वो देखते हैं कि ना मुसलमानों के पास दौलत है ना शान व शौकत है, हर लम्हे दुश्मन के हमलों का ख़तरा है, हर वक्त खौफ ही है कि इस्लाम कुछ मांग ना ले, कहीं जान और माल के तकाजे इस्लाम की ज़रूरत बन चुके होते हैं। इसके बरक्स वो देखते हैं कि कुफ्फार तो माशाल्लाह खूब मज़े में, एक तो रंग उनका बड़ा गोरा है, गोरे रंग को लोग कामयाबी की दलील समझ लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि दुनिया में दौलत भी बहुत है माल भी बहुत है, तो वो सोचते हैं कि अच्छा इज्जत चाहिए तो बस फिर इज्जत तो मिलेगी जब तुम भी वही काम कर लो जो ये। वो उनकी अच्छी बातों को नहीं देखते बल्कि उनके कुफर को उनकी इज्जत की वजह समझ के उनके पास पहुँचते हैं इज्जत की भीख मांगने। ऐसे लोगों को कह दो कि फाइनल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह की है, सब कुछ इज्जत उसके पास है। मुराद क्या है कि जो अल्लाह के हुक्मों पे चलेगा अल्लाह की बातों को मानेगा उसको इज्जत मिलेगी। अल्लाह की बात को छोड़कर इज्जत मिल सकती है, अल्लाह की किताब को छोड़कर इज्जत मिल सकती है। आप देखिए कि आज हमारे माशरे में ये बात है, एक शख्स पूरे इस्लामी हुलिये में आपके सामने आ जाए, दरवाजे पे नॉक करे, उसके दरवाज़ा खोलने पे उसको देखकर किसी इंसान के दिल में क्या ख्याल आएगा, और बेल हो और दरवाज़ा खोले और एक फुल मॉड स्कॉट लेडी जो अपने हाल हुलिये को बिल्कुल वेस्टर्नाइज कर चुकी हो उसको देखकर आपकी टोन कैसी होगी। पहली को देख के तो शायद नौज़ुबिल्लाह यही ख्याल आ जाए कि ये कोई मांगने आ गए या कोई चंदा मांगने आ गया या कोई दर्स की दावत देने आ गया और या फिर कोई और भी बेचारा राख चलता है। इज्जत करेंगे लेकिन उसको वहीं अंदर ही बस लॉबी में बिठा लेंगे कि चलो आइए बैठिए बताइए क्या चाह रही थी, क्या खिदमत करूँ, और मासी को कहेंगे कि रूह अफ़ज़ा का ग्लास ला के रख दो आगे। और अगर कोई आ जाए ज़रा वेस्टर्न कल्चर में और साथ एक्सक्यूज़ मी भी कह दे तो फिर हम कहेंगे नहीं प्लीज़ अंदर लाइए, तशरीफ़ लाइए, ड्राइंग रूम में बैठिए, फिर रूह अफ़ज़ा की जगह कोक खुलेगी और फिर पहले जब वो बताएंगे अपनी बातें उससे पहले हम उनके आगे अपना दिल और दिमाग दे चुके होंगे। आप देखिए ये बातें बड़ी तलख लग रही होंगी, मुझे पता है कि ये जुमले बहुत छुपते हुए जुमले होते हैं, लेकिन क्या ये आज हमारी तस्वीर नहीं है? आज हमने किस चीज़ को इज्जत का मियार समझा? आप हाल हुलिये को लेकर खाने पीने के स्टाइल को ले लें, जीने मरने के तरीकों को देखें, किसको मॉडर्न कहते हैं, किसको कामयाब कहते हैं, किस तालीम का नाम हमारी नज़र में कामयाबी है? क्या अल्लाह ताला की ये बात सच नहीं, क्या यब तगून इंदहुमुल इज्जा, तुम इनकी नज़रों में इज्जत लेना चाहते हो, यानी अल्लाह की निगाहों में अल्लाह के दीन की नज़रों में गिर गए, वहाँ से तुम बिल्कुल यूं चले गए कि जैसे तुम धुतकारे हुए हो, और तुमने ऐसी जगहों को पसंद कर लिया अपनी ज़िंदगी के लिए कि जहाँ दीन गया तो गया, जहाँ ईमान गया तो गया, हलाल और हराम का फ़र्क गया तो गया, लेकिन तुम ये बहुत खुश हो कि तुम्हें इज्जत मिली। तो याद रखो कि फ़ाइनल इज्जत लिल्लाहि जमीया, अल्लाह के पास है इज्जत, तुम गलत दरवाजे खटखटा रहे हो, यहाँ से इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत तो अल अज़ीज़ के पास है, जिसने उस इज्जत वाले के साथ ताल्लुक़ जोड़ा वो उसको भी अज़ीज़ कर देगा। वो मालिकुल मुल्क है, तू तिल मुल्क मंतशा व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, वो इज्जत देगा। तुम समझते हो कुफार की नकाली करके तुम अंग्रेज़ बन जाओगे तो इज्जत मिल जाएगी, अगर ये मिलनी होती ना तो आज के दौर में तो मुसलमानों को इज्जत मिल चुकी होती, क्योंकि एड़ियाँ उठा उठा के एड़ी से चोटी का जोर लगा के मुसलमान कुफार की नकाली कर रहे हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, अगर आज इस तशबीह से इज्जत मिल चुकती तो आज मिल चुकी होती। हमने क्या नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने अपने कानून छोड़े, हमने अपने तौर तरीके छोड़े, हमने तो अपनी रिवायात तक छोड़ दी, हमने तो अपने आप को इस तरह से दूसरों की जूतियाँ सीधी करने पर लगा दिया कि जिसके बाद लगा कि वाकई इज्जत मिलेगी, लेकिन इज्जत मिल गई। किसी की डेस्कटॉप पे मैंने एक तस्वीर देखी थी तो बहुत ही तकलीफ़ देने वाली, लेकिन उसमें उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों के जो लीडर्स थे उनको दिखाया हुआ था और हमारे मुल्कों के जो हुक्मरान थे उसको बहुत छोटे कद का दिखा के उसकी उस बड़ी हुकूमत के सरबराह की जूती सीधी करते हुए दिखाया गया। मेरे जहन पे नक्श हो गई, किसी कैसी मैंने राह चलते कहीं देखी तो दुख बहुत हुआ कि ये हालत हो चुकी है कि हम तो इनफिरादी तो छोड़ें इज्तमाही तौर पर दूसरों की जूतियाँ सीधी करते हैं तो क्या इज्जत मिल गई? फिर क्यों धमकियाँ मिलती हैं? फिर क्यों मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता है? आज अगर काफिर ही हमें सीने से लगा लेते तो चले कहते कुछ तो पाया, चलो वो कहते हैं ना कि अल्लाह का दामन छोड़ा तो कुछ तो मिला, لیکن کیا وہ کیفیت نہیں ہوئی کہ نہ وہ خدا ملا اور نہ وصال صنم ملا، نہ بت خانہ ہمارا بنا نہ مسجد ہماری بنی، ہم نے کیا تو کیا کیا، پایا تو کیا پایا، ہم دوسروں سے عزت لیں گے؟ آپ دیکھیے کہ بندروں کی کوئی عزت کرتا ہے؟ بندر جو ہے وہ خوبصورت لگے، پیارا لگے، اس کو دے کے لوگ خوش ہوں، لیکن عزت نہیں کرتا. اور بندر کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نقالی. ایک اسپیکر ہے انگلش کے، بہت ہی اچھا بولتے ہیں ماشاء اللہ، یاسر فزاقہ، تو ان کی ایک اسپیچ ہے، آپ کو کبھی موقع ملے تو سنیے. آر یو منکی؟ کیا تم بندر ہو؟ اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کا انالیسز کیا ہے کہ تم تو بالکل ویسے ہی بنتے ہو جیسے تم بنتے ہو. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ تم مثل با مثل ان لوگوں کے قدموں پہ چلو گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی جانور کے کھو میں جائے گا تو تم بھی جاؤ گے، ان میں سے کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تم وہ بھی کرو گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی مراد یہود اور نصارہ کی مماثلت یا ان کی تشبیہ؟ تو آپ نے کہا اور نہیں تو کیا. ان سب باتوں کو اس کلاس روم سے نکل کر، اکیلے میں بیٹھ کر، صرف اپنے اس 5 سے 6 7 فٹ کے جسم پہ تاری کر کے پوچھنا ہے کہ کیا میری سوچ تو نہیں بدل چکی. اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو، مسلمان ہونے پہ فخر کرو، کیوں اپنے حلیے خراب کرتے ہو؟ جن کے ہاتھوں سے دھکے کھاتے ہو پھر انہی کے پیچھے چلتے ہو؟ اتنی محنت جو تم ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی نظروں میں پنپنے کے لیے کر رہے ہو، اگر تم نے رب کو راضی کرنے کے لیے کی ہوتی تو آج کب کا وہ راضی ہو چکا ہوتا. اور اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو کہ تمہارے اوپر صرف اسلام کا چھلکا رہ جائے گا اور اندر سے تم پورے کے پورے کافر ہو چکے ہوگے. تمہارے اندر وہ اسلام رہے گا ہی نہیں جس کو تم اللہ کی مدد کے لیے ضروری سمجھو. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں پہ اللہ کی مدد آتی تھی کب؟ جب اسلام تھا. کسی نے کسی سے کہا کہ تم قرآن پاک میں تو یہ پڑھتے ہو کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، آج کدھر ہے اللہ اور آج کدھر ہے فرشتے؟ ہر محاذ پہ تو مسلمان کی گردن کٹ رہی ہے، تو آج کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فرشتے آئے تھے لیکن اسلام مسلمان دکھے ہی نہیں. یعنی آج اسلام ہے نہیں، دکھتا نہیں، تو مدد کہاں سے آئے گی؟ اور عزت دوسروں سے مانگنا یہ صرف ملکی اور قومی سطح پہ نہیں، خاندانوں میں دیکھ لیں کس کس سے عزت کی بھیک مانگتے ہیں. بیٹی کو بڑا جہیز کا ٹرک بھیجو تاکہ عزت ہوگی، ساس کو موٹے کڑے پہناؤ تاکہ عزت ہوگی، داماد کو راڈو کی گھڑی پہنا دو بڑی عزت کرے گا. کرتے ہیں پھر، وہ سر پہ سوار ہوتے ہیں. آپ جس کے آگے جھک گئے، جس کی غلط ایک آپ نے مانی، وہ آپ سے دوسری بھی باتیں منوائے گا. تو ہم سب نے اپنا رخ صحیح کرنا ہے، کہیں عزت نہیں ملے گی. واللہ ہی آپ کچھ بھی کر لیں عزت نہیں ملے گی. عزت ملے گی تو اسی کام سے ملے گی جس سے ابو بکر کو ملی، عمر فاروق کو ملی، ابو ہریرہ کو ملی، عمر بن العاص، مصر کے فاتح. ایک بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ساتھیوں نے کہا کپڑے تو بدل لیں. کہا کیوں؟ جن کپڑوں میں اپنے رب کے سامنے دن میں 5 بار جاتا ہوں تو میں اس بادشاہ کے سامنے کیوں کپڑے بدلوں؟ یہ ہوتی عزت. ہم تو پہلے اپنا حلیہ دیکھتے ہیں کہ کیا پہن کے جائیں گے کہ عزت ہوگی. مجھے حیرت ہوتی ہے اس وقت جب ہم مسلمان ڈاکٹرز کے اپائنمنٹس پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے حلیے بدل دیتے ہیں. ہمارا کوئی اگر یو ڈی آئی میں کوئی انٹرویو ہے، کہیں جہاں نان مسلم سے انٹریکشن ہے، ایک دم ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. اور بات کیا کرتے ہیں، نہیں نہیں وہ اصل میں پھر اسلام کو خطرہ ہے. اپنی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں کچھ بھی پہن لے، جب بسوں میں جانا پڑتا ہے، ٹرینز میں جانا پڑتا ہے، کہتے ہیں نہیں پھر ان کو پتہ نہ چل جائے. کیا پتہ نہیں چلتا ان کو کیا مسلمان ہے؟ کئی دفعہ میں فیل کرتی ہوں، آبزرو کرتی ہوں لوگوں کو رات چلتے، مجھے تو صرف لک سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے مسلمان اصل میں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ دکھنا نہیں چاہتی. کیوں ہمارے دوپٹے، ہمارے اسکارف جو ہیں وہ اتر کے بیگوں میں چلے جاتے ہیں جب ہم پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں؟ عزت چاہتے ہیں. ہم سفر ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں اسلامی حلیے میں دیکھے. جب تک مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں کرے گا تب تک عزت نہیں آئے گی. اور یہ بات ہم سے زیادہ کفار کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہوگا. ایک میں نے شاید پہلے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ میری ایک بہت ہی اچھی دوست ہیں، تو وہ امریکہ میں جب شفٹ ہوئی تو ان کی بچی 10-12 سال کی تھی. انہوں نے ان اسکول میں ایک پیپر لکھ کے بھیجا اور کہا کہ بھائی میری بچی جو ہے وہ ابائے میں آئے گی اور اسکارف میں آئے گی، کیونکہ پاکستان میں بھی ایسی تھی. انہوں نے وجہ پوچھی، کہا کہ کوئی دلائل دیں. انہوں نے کوئی قرآن پاک کی آیتیں جمع کر کے ایک ہینڈ آؤٹ بنایا، سورت نے سورت نور اور سورہ الاحزاب وغیرہ کی آیتوں کا، ان کو دے دیا. اسکول میں اجازت مل گئی، ان کی بچی ابائے کے ساتھ اور اسکارف کے ساتھ اسکول میں جاتی تھی، حالانکہ باقی سب جو تھے وہ جو بھی ان کا یونیفارم تھا یا وٹ ایور، کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر اسی اسکول میں ایک اور بچی بھی آئی جو مسلمان تھی، और उन्होंने अब स्कूल वालों से सिर्फ ये इजाज़त मांगी कि शर्ट जो है वो पैंट के अंदर करने के बजाय बाहर की इजाज़त दे दें, यानी बस हमारी बच्ची शर्ट बाहर निकाल ले। तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा भी क्यों नहीं दी, तो ला के उस मेरी दोस्त की बच्ची को दिखाया, कहा कि अगर तुम मुसलमान हो ना तो ये पहन के आओ जो ये बच्ची पहनती है, शर्ट को पैंट से बाहर या अंदर करने से तुम मुसलमान नहीं हो जाओगी। अब ये एक छोटा सा वाक्य है, ऐसे बीसियों वाक्यात हो सकते हैं। जब तक हमें खुद यकीन नहीं आएगा कि हम अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं, तब तक याद रखिए कि दुनिया में कोई बंदा मुसलमानों के हालात नहीं बदल सकता। मुसलमानों की इज्जत तो क्या, मैं सोचती हूँ कि दिन ब दिन आप देखिए कि जिल्लतों और पस्तियों में इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इज्जत और जिल्लत के मेयार बदल दे। जिसकी चीज़ होती है उससे मिलेगी। आप गैर से जाके सारा दिन खड़े रहें, मिसाल है कि आप सब्जी वाले की दुकान पे सारा दिन खड़े रहें और कहें गोश्त दे दो गोश्त दे दो, वो देगा? आप सारा दिन वकील की दुकान पे बैठे रहें और कहें कि सर दर्द की दवा दे दो सर दर्द की दवा दे दो, वो देगा? नहीं देगा। हमारी इज्जत बड़ी गाड़ियों से नहीं है, हमारी इज्जत बड़े घरों से नहीं है, हमारी इज्जत जो है वो अब इस्लाम पे अमल करने से है। और ख़ास तौर पे यहाँ मैं अपने आप को और आप सबको जो माशाल्लाह अब दीन के तारुफ से पहचाने जा रहे हैं, इनको एक पैगाम दूंगी। बाकी सब जो कर रहे हैं उनको करने दें, लेकिन मेरी और आपकी इज्जत अब जो है ना वो इस किताब पर अमल से है। अब सबको पता है इस माशरे में कि हम किताब से जुड़े हुए लोग हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अब लोग हमें इस नज़र से देखेंगे कि कुरान पढ़ने वाले कैसे होते हैं, इनके काम इनके अमल, ये क्या तिजारतें करते हैं, ये कैसे घर लेते हैं, ये कैसे अपनी ज़िंदगी के की गाड़ियों को चला रहे हैं। अब अगर हम उनको खुश करने के लिए कुछ गलत भी करेंगे ना, तो बाद में लोग कानों में बातें करेंगे। अगर किसी मौके पे आप पूरी कोशिश करके वही करें जो सब कर रहे हैं और उसके बाद दो चार लोगों को कानों में बातें करते देखें, तो फौरन समझ लें कि वो यही कह रहा है कि देखो कुरान पढ़ के भी ऐसी है, फलां जगह तो ऐसी होती है, यहाँ ये है। हम चूंकि पीयर प्रेशर नहीं ले सकते ना, और मैं कहती हूँ गैरों का प्रेशर तो पीछे डालिए, हम तो अपनों का प्रेशर नहीं ले सकते। अब होता क्या है कि जब हम ऐसे मौक़ों में जाते हैं, शादियां हैं या फंक्शंस हैं, तो हम फिर वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की लुक्स को सफ़र नहीं कर सकते कि लोग क्या देखेंगे और करेंगे कि ये ऐसी है वैसी है। अब हमने उनको खुश करने के लिए अपने हुलिए हाल को चेंज किया। कोई बहू है तो वो सास को खुश करने के लिए कर लेगी, कोई बीवी है तो मियाँ को खुश करने के लिए करेगी, लेकिन बाद में उसी को बातें सुननी पड़ेगी। हमारी इज्जत बस अब एक ही चीज़ में है कि अल्लाह के दीन को अगर अपनाया तो हर जगह इस पे जम जाए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इस पे इज्जत है। चंद दिन अगर लोगों के माथों पे बल आएंगे, लेकिन फिर भी इज्जत करेंगे। और याद रखिए सच्चे इस्लाम की यही खूबी है, लोग खुद वो अपनाना चाहें कि ना चाहें, दूसरे की तारीफ बहुत करेंगे, नहीं आप बहुत अच्छा काम करें, नहीं दुआ करें हम भी ऐसे हो जाए। मुझे कभी कोई कहे ना तो मैं कहती हूँ कि आप कोशिश करें, यानी दुआ तो है लेकिन साथ कोशिश तो है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ते पे हमारी तवज्जो दिलाई। यहाँ तक तिलावत सुनेंगे, फिर अगली आयतों में अब कुछ और ऐसी वजूहात का तذکرہ है जो बंदे को ईमान से कुफर की तरफ ले जाती हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
جی ان کا سوال ہے کہ بعض دفعہ انسان جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں بہت سالوں سے ہم کرتے کرا رہے ہوتے ہیں پھر کچھ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر غلطی سے کر لیتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں تو کیا یہ بھی آیت 137 کہ آمنوا کافروا میں تو ایسا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ بچہ ایک دم تو نہیں بھاگنے لگتا. اس وقت اگر آپ اپنی پچھلی زندگی سے 10% بھی ٹھیک ہو چکے ہیں اور ابھی اسٹل 90% برائیاں ہیں تو آپ مبارک کے لائق ہیں. یہ کفر نہیں ہے, یہ نفاق نہیں, یہ تو آپ کو عادت ہو رہی ہے. جیسے بچہ چلنے سے پہلے کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, گرتا پڑتا. جیسے بچہ بھاگنے سے پہلے گر گر کے اٹھتا ہے نا, اس طرح الحمدللہ جب قرآن کا آئینہ ہمیں دکھتا ہے, ہمیں اپنے عیب اور اپنے نقص دکھتے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ, بلکہ یہ تو آپ کا یہ سوال بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر سچا ایمان ہے. کافر کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا, وہ اس کو بلکہ نیکی کے سامنے کام پہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم جیسا دیس ہے ویسا بیس بناؤ, جیسا سب کریں ویسا کرو. اور نفاق تو وہ ایک روگ لگا ہوا ہے نا, یہ ایسے ہی جیسے ایک شخص کو آج بخار ہو رہا ہے کل ٹھیک ہو گیا, آج بخار ہے کل ٹھیک ہو گیا. کبھی آپ نے اس کا نام سنا ہے؟ ہمارے یہاں اس کو کچھ بولتے ہیں باری کا بخار, یا چڑھ چڑھ کے اترتا ہے تو فوراً ڈاکٹروں کو فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں ٹائیفائڈ کا جرم تو نہیں اس کے اندر, یہ بیمار نہیں. بالکل اسی طرح جب جانتے بوجھتے کسی انسان کو صحیح غلط پہ کرے تو وہ سمجھ لیے کہ خطرے کی بات ہے. باقی ٹیمپریچر باہر بھی کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے, اندر کے بھی کم اور زیادہ ہوتے ہیں. اور صحیح مسئلہ ہے کہ یعنی صحیح لفظ میں نے اس لیے بول دیا کہ اس کے اوپر بہت سارے باطل عقائد تھے, انہوں نے اعتراض کیا اور وہ کہ ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. پیچھے سورت آل عمران میں ہم پڑھ چکے فزادہم اللہ ایمانا میں کہ صحابہ کے ایمان اور بڑھ گئے تھے اس خبر کو سن گئے کہ ابو سفیان لشکر لا رہا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا, کبھی بہت نیکیاں کرتے ہیں کبھی کم پھر گناہ پہ آ جاتے ہیں, یہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا. اور ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے گناہوں سے گھٹتا ہے. پیریڈس کے دنوں میں جب نماز چھوٹتی ہے تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ خود بخود کئی چیزوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. قرآن سننے آتے ہیں اگر منڈے سے تھرسڈے یا فرائیڈے آپ آتے ہیں, ان 5 دنوں میں آپ خود فیل کریں گے روز آپ کے اندر ایک نئی طاقت ہے. اور آپ جب آنا چھوڑ دیں یا ویکینڈز پہ دیکھیں شادیوں میں پارٹیوں میں غفلت کی زندگی میں رہیں گے, خود بخود نمازوں کا خشوع کم ہوگا. تو اس کا علاج کیا ہے کہ پہلی بات ہے فکر رکھیں, کیونکہ یہ بہت غلط ہوتا ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے, یا شوگر بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے, اس کے اوپر کنٹرول رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ نیکیوں کے ماحول میں رہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ.